राधा माधव राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी हरी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बन चाहरे यमुना तेरा बन चाहरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृता बलराम कृता बलराम कृता बलराम जय कृता बलराम जय गौरनिताये 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 जय गौरनिता प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभु शील प्रभुपाद की ग्रंथरा श्रीमद भागवतम महापुराण की गौर प्रेमनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद भागवत से पठन स्कंद 8 अध्याय 5 और श्लोक संख्या आपका होगा 37 से लेकर के 37 से लेकर के और 43 तक। आवाज कम तो नहीं है, पीछे आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है, थोड़ा सा देख लो। तो हम अभी इसको पढ़ करके इसका अनुवाद करते हुए निकलते हैं, लास्ट के उस पे जो है हम, ठीक है ना, रिवाइजन करेंगे। हरी हरी, अभी आ रही है, थोड़ा सा और। प्राणाद भूत यस्य चराचराणां प्राणसौ बलमोजस्य वायु अनवास्म सम्राजमिवानुगावयम् प्रसीदताम् न सा महाविभूतिः। सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवन शक्ति अर्थात प्राण, अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपना जीवन तथा वायु से प्राप्त करते हैं, जीवन तक वायु से प्राप्त करते हैं। ये जो स्तुतियां चल रही हैं 26 से लेकर के श्लोक संख्या 26 से लेकर के 50 श्लोक तक, इसका मतलब 25 श्लोकों में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुतियां चल रही है। तो ब्रह्मा जी भगवान के इस संसार के अंदर जो कुछ भी देख रहे हैं सब भगवान से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ब्रह्मा जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवनी शक्ति अर्थात प्राण शक्ति, जीने की शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति बल और अपना जीवन तक वायु से प्राप्त होता है। ये सारी चीजें वायु से होती हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार राजा का अनुसरण नौकर करता है। मतलब हम वायु पर कैसे आधारित हैं इसके बारे में एक उदाहरण दिए हैं, राजा और नौकर का। जैसे नौकर राजा का हर समय अनुसरण करता है, ठीक ऐसे ही हम वायु से हैं, बिना वायु के एक सेकंड में ही हालत खराब होगी। तो उसी प्रकार हम अनुसरण करते हैं। तो वायु की जीवनी शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मूल जीवन शक्ति से उत्पन्न होती है। तो ये वायु जो है, वायु के अंदर जो जीवनी शक्ति है वो सब कहां से उत्पन्न हो रही है? वो भगवान की जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे श्री भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्रोत्राद दिशो यस्य हृदयस्य खानी, चलो ठीक है, हम प्रजग्रेखम पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीर केतः प्रसीदताम न सह महाभिभूति। वे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, विभिन्न दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती हैं, शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं एवं प्राण, इंद्रियां, मन, शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य अर्थात आकाश उनकी नाभि से निकलते हैं। कैसे जो है अलग अलग चीजें भगवान के शरीर से निकल रही हैं। बलान महेंद्र त्रिदशा प्रसाद मन्योर गिरीशो दिशणाद विरंची खेम्यस्तु छंदा श्यसयो मेणतः कह प्रसीदताम न सह महाभिभूति। स्वर्ग का राजा महेंद्र श्री भगवान के बल से उत्पन्न हुआ है। महेंद्र मतलब इंद्र, जो स्वर्ग का राजा है वो भगवान की बल शक्ति से है, और देवतागण श्री भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए हैं। शिवजी श्री भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए हैं। तथा ऋषि तथा प्रजागण उनकी जननेन्द्रियों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री वत्सस्य पितरच्छायया सन् धर्मस्तनादितरः पृष्ठतो भूत धौर्यस्य शिष्णोऽप्सरसो विहारात् प्रसीदताम् न सह महाविभूति। लक्ष्मी जी उनके वत्सस्थल से उत्पन्न हुई, पितृलोक के निवासी उनकी छाया से, धर्म उनके स्तन से तथा अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ। स्वर्ग लोक उनके सिर की चोटी से, अप्सराएं उनके इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई हैं। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। भाई किसी का भी आप गुणगान करोगे संसार के अंदर, वो व्यक्ति प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? साधारण सी बात है। या आप किसी का जो है थोड़ा सा भी, हालांकि वो गुण उसके अंदर न हो, फिर भी उनकी आप प्रशंसा कर दो, आप तो प्रभु जी बहुत महान है, देखो आप तो जो है इतनी अच्छी क्लास देते हैं और आप गाते क्या है, प्रभु जी आपका तो कमाल कर दिया है। अब लोग भी बड़े जो है पागल हो जाते हैं आपका क्लास सुनने के लिए, तो वो भी सोचने लगता है, लगता है कुछ तो है मेरे अंदर है? तो फिर वो फिर बोले प्रभु जी थोड़ा से हमारा काम था, ठीक है ठीक है ठीक है हम करते हैं, क्या क्या वो फोन करके फिर प्रयास करेगा पूरा उसको निपटाने का। तो संसार में जो स्तुति सुनना ये सब भगवान से आई है, क्योंकि भगवान भी स्तुतियों को लायक करते हैं, इसलिए भगवान की कुछ स्तुतियां गाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला है कम से कम ब्रह्म संहिता बोलो। आप जो है कुंती की स्तुति है, भीष्म पितामह की स्तुति है, सुखदेव की, गोस्वामी की स्तुति है, बहुत सारी भागवत तो स्तुतियों से ही भरा हुआ है, तो उनमें से कुछ तो हमें बोलना चाहिए ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। इसलिए यहाँ मंदिर खुलता है तो कम से कम दो स्तुतियां ब्रह्म संहिता की यहाँ पर सुबह सुबह भगवान की प्रसन्नता के लिए दोहराते हैं, ये परंपरा कर दी है। तो इसलिए स्तुतियां बहुत महत्वपूर्ण है, हमें याद करना चाहिए प्रसन्नता के लिए, डेली उनको बोलना चाहिए। विप्रो मुखाद ब्रह्मच्छ यस्य गुह्यं राजन्य आसीद भुजयो बलं च उर्वोर्विदो जो अंगिरवेद सुद्रो प्रसीद ताम न स महाभिभूति। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकले, क्षत्रिय तथा शारीरिक शक्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य तथा उत्पादक कर्ता एवं धन संपदा संपत्ति उनका दक्ष ज्ञान उनकी जांघों से, तथा वैदिक ज्ञान से बिलग रहने वाले शूद्र, यहाँ शूद्र की परिभाषा दे रहे हैं जो वैदिक ज्ञान में है निपुण नहीं है, वैदिक ज्ञान को नहीं जानता है वो शूद्र है। ये कोई विशेष जाति विशेष से नहीं दे रहे यहाँ पर। एक अभी कुछ वो चल रहा था ना एक चौपाई पे, तो भागवत इस बात को बोला है कि शूद्र कौन है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन यदि वैदिक ज्ञान से विहीन है तो शूद्र ही समान। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, मंत्र क्या बोलते हैं, मंत्र तंत्र विशारद स्वपचो, मतलब जो ब्राह्मण है जो भक्ति का आचरण नहीं कर रहा है तो वो शूद्र के समान है, और शूद्र भी यदि भगवान का भजन कर रहा है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो शूद्र जो है वैदिक ज्ञान से बिलग रहने वाले शूद्र उनके चरणों से निकले, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो पराक्रम से पूर्ण है हम पर प्रसन्न हो। लोभो धरात प्रीति रूपर्य भूद धुति नस्त पसव्य स्पर्शे न काम भ्रवोर यमः पश्म भवस्तु काल प्रसीदताम न सह महाभिभूति। लोभ उनके निचले होठ से, प्रीति उनके ऊपरी होठ से, शारीरिक कांति उनकी नाक से, पाशविक वासनाएं उनकी स्पर्शेंद्रियों से, यमराज उनकी भवों से तथा नित्य काल उनकी पलकों से उत्पन्न होते हैं। वे श्री भगवान हम पर प्रसन्न हो। अब जो है इसको प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है तो इसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं। द्रव्यं वया कर्म गुणान् विशेषम्। द्रव्यं वयः कर्म गुणान् विशेषम्। युद्ध्योगमाया विहितान् वदन्ति यद्योगमाया विहितान् वदन्ति यद दुर्विभाव्यं प्रबुधापवादम्। यत दुर्विभाव्यं प्रबुधापवादम् प्रसीदताम् न सह महाविभूति। प्रसीदताम् न सह महाविभूति। द्रव्यं वयः कर्म गुणान् विशेषम्। यद्योगमाया विहितान् वदन्ति यद्दुर्विभाव्यं प्रबुदापवादम् प्रसीदता न सह महाविभूति। प्रसीदतां न सह महाविभूति।
तो एक बार सब मिलकर के बोल दो। एक बार और बोल दो।
एक बार और। द्रव्यं वयः कर्म गुणान् विशेषम्। युद्ध्योगमाया विहितान् वदन्ति यद् दुर्विभाव्यं प्रबुदापवादम् प्रसीदतां न सह महाविभूति।
एक साथ बोलने से जो नहीं बोल पाते वो भी बोल लेते हैं।
अच्छा, शब्दार्थ द्रव्यं भौतिक जगत के पांच तत्व
कौन कौन से?
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांच तत्व। वय काल, कर्म सकाम कर्म, गुणान भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को, विशेषम 23 तत्वों के संयोग से उत्पन्न किसमें, यता जो, ये 23 तत्व
मतलब इस सृष्टि के लिए, ठीक है ना, 23 तत्व जरूरी हैं, जिसमें जीव 24 और भगवान 25। तो जीव और भगवान तो ये माया का वो नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए 23 तत्व इस संसार के अंदर जो भी वस्तुएं बनी हैं इन्हीं के संयोग से बनी। जो कुछ भी चित्र विचित्र देख रहे हैं इसमें जो है जीव भी मिक्स रहता है, फिर भगवान, तो ये 25 तत्व हो जाते हैं लगभग। तो ये सब क्या नाम है, ये सृष्टि के अंदर ये सब कुछ क्रिएशन फिर इसी से हो रहा है। 14 लोक तक, ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल पर्यंत तक जो कुछ भी है सब माया का वैभव है।
यता जो योग माया श्री भगवान की सृजनात्मक शक्ति से विहितान किया गया, बदंती विद्वान लोग कहते हैं, यत दुर्विभाव्यम जिसे समझ पाना वास्तव में कठिन है, प्रबुदा अपबाधम जो लोग पूर्णतया अवगत हैं, उन विद्वानों के द्वारा तिरस्कृत, प्रसीदता प्रसन्न हो न हम पर, सह वे महाविभूति
हर वस्तु के नियंता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद है इस प्रकार, सभी विद्वान लोग कहते हैं कि पांचों तत्व सनातन काल, सकाम कर्म, भौतिक प्रकृति के तीन गुण तथा इन गुणों से उत्पन्न विभिन्न किस्में, ये सब योग माया की सृष्टियां हैं। अतएव इस भौतिक जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं, उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया है। किसका तिरस्कार कर दिया? इस भौतिक जगत का। वो ज्यादा इसको लायक नहीं करते। क्यों लायक नहीं करते हैं? वो बाद में बताएंगे। किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं, उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया है। जो सभी वस्तुओं के नियंता हैं, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सब पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, इस श्लोक का दुर्विभाव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्तियों के माध्यम से उनकी व्यवस्था द्वारा प्रत्येक वस्तु किस तरह से इस जगत में घटित हो रही है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9:10 में कहा गया है, मयाद्यच्छेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में घटित हो रही है। बस हम तो इतना ही जान सकते हैं, किंतु यह सब कैसे हो रहा है इसे समझ पाना दुष्कर है। हम इतना भी नहीं समझ पाते कि हमारे शरीर के भीतर किस तरह व्यवस्थित रूप से सब कुछ हो रहा है। यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, किंतु हम यह समझ नहीं सकते कि किस छोटे से ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे हो रहा है। तो फिर विशाल ब्रह्मांड के कार्यकलापों के विषय में हम कैसे जान सकते हैं? वस्तुतः इस ब्रह्मांड को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी विद्वान संतों ने उपदेश दिया है। इस संसार को कैसे समझेंगे? तो विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा उपदेश दिया है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि यह संसार, यह भौतिक जगत दुखालय अशाश्वतम। क्यों तिरस्कार किया इस संसार का? क्योंकि यह संसार रहने का स्थान नहीं है। जैसे जेल में कोई गया, अब जेल में रहने, जेल थोड़ी कोई सज्जन लोगों के रहने के लिए है, दुर्जनों के लिए तो वहां भी चैन की बंसी बजती है। काम धंधे से छुटकारा, परिवार से छुटकारा, बीवी बच्चों से छुटकारा, सबसे कम से कम जैसे तैसे मिल तो रही है, चाचे गाली मिलती है, दो चार डंडे मिलते हैं साथ साथ में, लेकिन कम से कम खाना तो मिल रहा है ना, सोने के लिए तो मिल रहा है। तो वही वहां आराम से अपना चैन की बंसी बोलते हैं, ठीक है पड़े रहो यार। एक बार हमारे यहाँ के जो एक नेता थे आरएसएस के, तो जेल में गए थे, तो जब क्या नाम, वो शाखा हो रही थी, तो वहां अपनी प्रशंसा कर रहे थे कि मैं एक महीने जेल में रहा और 5 किलो मेरा वजन बढ़ गया था। इसका मतलब खातिरदारी अच्छी हुई वहां। तो जो भी है, फिर भी है, जेल जेल ही है। खातिरदारी कैसी हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सज्जन लोग इस ऐसी खातिरदारी को, जहां गाली भी पड़ती रहे है? और रसगुल्ला भी एक दे दे, एक गाली खाओ एक रसगुल्ला खाओ, वो लायक नहीं करते। तो इसलिए ये भौतिक जगत दुखालय अशाश्वत, दुख तथा नश्वरता का स्थान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस जगत को त्याग दें और भगवत धाम को वापस जाएं। भौतिकतावादी लोग तर्क कर सकते हैं कि यदि इस भौतिक जगत तथा इसके कार्यकलापों को समझना असंभव है, तो हम इसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? बात तो सही है, जब हम समझ ही नहीं पाएंगे तो इसका तिरस्कार कैसे करेंगे? तो उसका भी उपाय यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका उत्तर प्रबुधापवादम शब्द से मिल जाता है। हमें इस भौतिक जगत का प्रत्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका त्याग वेद विदों द्वारा होता है। वेद विद, जो वेदों के भी ज्ञाता है, जो वेदों के सार को समझे हैं, तो उन्होंने इस संसार के बारे में ठीक से समझा है कि ये संसार रहने का स्थान नहीं है, इसमें से निकलना ही चाहिए। जैसे कोई कुआं में गिर गया है, अब कुआ में थोड़ी वो मकान बनाएगा, क्या करेगा, निकलने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? नहीं तो सोचेगा चलो यार झोंपड़ी डाल लो, यही हम कहां भागते फिरेंगे, वहीं रहो। तो नहीं, तो ऐसे ही जो वेद विद है, वेदों के एसेंस को जो ठीक से समझे हैं या शास्त्रों के ज्ञान को ठीक से जो समझे हैं, उन्होंने ये जाना है कि वास्तव में संसार रहने का स्थान नहीं है, संसार नहीं है रहने को, यहां दुख ही दुख है सहने को। तो इसलिए संसार रहने का स्थान नहीं है। तो इसका उत्तर प्रबोधापवादम शब्द से मिल जाता है। हमें इस भौतिक जगत का प्रत्याग करना चाहिए क्योंकि इसका त्याग वेद वेदों द्वारा होता है। यद्यपि हम ये नहीं समझ पाते कि भौतिक जगत क्या है, किंतु हमें विद्वानों के उपदेशानुसार, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार इसे त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। विद्वान तो कहते ही हैं, साथ साथ में भगवान ने भी अपनी सम्मति जताई है। भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान कहते हैं, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालया मशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मानः संसिद्धि परमाम गता। मुझे प्राप्त करके भक्ति में स्थित योगीजन कभी इस दुख से भरे नश्वर जगत में वापस नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8:15, ये इसका वो है 8वें अध्याय 15वां का श्लोक। मनुष्य को भगवत धाम वापस लौटना होता है क्योंकि जीवन की परम सिद्धि यही है। भगवत धाम जाने का अर्थ है इस भौतिक जगत का परित्याग। यद्यपि हम इस भौतिक जगत के कार्यों को समझ नहीं सकते और ये हमारे लिए चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें प्रामाणिक महाजनों के उपदेश के अनुसार इसका परित्याग कर देना चाहिए और भगवत धाम वापस जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश्य भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणं। भूतैरमहद्वीयः इमां पुरो विभो निर्मायस्य ते यदमूष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् बचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम जो हैं, इसकी आवाज कुछ दबी दबी से नहीं लग रही है, शायद बेस आपका दबा हुआ है, बेस का वॉल्यूम लगता है कुछ थोड़ा सा है? थोड़ा सा। तो यहां पर जो है आप सुन रहे हैं, जिस समय देवता लोग श्रापित हुए दुर्वासा जी के द्वारा, क्योंकि एक बार जो है दुर्वासा जी भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। देखो अब क्लियर हो रही है ना, भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, करके आ रहे थे, तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला उनको दी थी। तो जब आ रहे थे रस्ते में, तो उसी रस्ते से कौन जा रहा था, इंद्र जा रहा था ऐरावत पर बैठ करके। तो दोनों की जो है रस्ते में भेंट हुई, तो इंद्र ने जो है प्रणाम किया, तो दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी माला निकाल करके उनके गले में डाल दी। लेकिन इंद्र ने क्या किया, उस माला को इमीडिएटली उन्हीं के सामने, हमें शिक्षा लेना चाहिए, किसी ने माला दी कितने प्रेम से, हालांकि वो कितने लोगों को देख रहे थे, लेकिन वो जो विशेष नजदीक है उसी को देखते हैं देते हैं। तो उन्होंने माला दी और इंद्र ने क्या किया, इमीडिएटली उस माला को निकाल करके हाथी के गले में डाल दिया। अब हाथी को माला थोड़ी कोई पहनाने की वस्तु होती है, अब घंटी बांध दो, घंटा बांध दो उसके गले में, माला जो है इतनी है। और हाथी तो हाथी था, वो तो बेचारा पशु है, उसको क्या मालूम, उसने समझा कुछ खाने पीने की वस्तु, खाने पीने के भी नहीं समझे, बेफालतू की चीज समझी, इसलिए अपनी सूंड से उसको निकाल करके पैर में नीचे डाल दी और उसको पैर से रगड़ दिया। तो ये सब चीजें जो है दुर्वासा जी ने देख लिया, उनका क्रोध इतना चढ़ गया साथ में आसमान पर, तुरंत उन्होंने साप दे दिया, मूर्ख है तू, इस जो है ऐश्वर्य के मद में, स्वर्ग के जो संपदा तुझे प्राप्त हुई है, स्वर्ग की इतनी बड़ी जो है आपको पदवी प्राप्त हुई है, उसके मद में तुझे इतना भी मालूम नहीं कि भगवान की माला का सम्मान कैसे किया जाता है। कभी कभी हम देखते कोई माला डालता उतार करके रख देते हैं साइड से, अरे भाई थोड़ा 5-10 मिनट पहनो, थोड़ी कोई ऐसा लग रहा बहुत वजन हो गया, अब क्या करूं चला नहीं जा रहा है, अब मोबाइल को तो हर समय हम जेब में रखते हैं, क्या क्या चीज को डाल के रख, उससे वजन नहीं लग रहा, तो उसको 5-10 मिनट पहनो, सम्मान दो, उसका स्वागत करो और उसको फिर किसी को दे दो, प्रभु जी आप ये माला ले लो, या ऐसे स्थान पर रख दो, चलो भाई कोई नहीं मिला है जहां अच्छा स्थान हो। तो इसलिए उन्होंने जो है साफ दे दी कि जा, तू जिस मद पर इतना अहंकारी हुआ है वो तो तेरा जो है पदवी है, वो तेरा जो है ऐश्वर्य क्या हो जाए, सब तुझसे छिन जाए, जा पथ भ्रष्ट हो जाए। और उसी समय जो है जैसे ही श्राप लगा, तो ये सब चीजें वायरलेस डायरेक्ट जो है असुरों के पास में लगी, स्वर्ग में जैसे यहां हम देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है, सारे संसार के जो है मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहां क्या क्या हो रहा है, सब कुछ मालूम चल रहा है। तो ऐसे ही तुरंत जो है असुरों को मालूम चल गया कि दुर्वासा जी ने देवताओं को साप दे दिया, वो तो तैयार बैठे हैं झगड़े के लिए, तुरंत टूट पड़े जो है असुरों के ऊपर। और तुरंत जब ऑलरेडी साप का परिणाम ये हुआ कि उनकी शक्ति छीण हुई, वो शक्ति छीण हुई तो असुरों से बिल्कुल परास्त हो गए, कुछ भी नहीं कर पाए, उनके अस्त्र शस्त्र भी कुछ नहीं कर पाए। अब जो है सब देवता घर छोड़ छाड़ करके, स्वर्ग छोड़ छाड़ करके फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए और रोते रोते ब्रह्मा जी को सब बताया। जब भी समस्या होती है तो बेचारे ब्रह्मा जी को बताते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सुना तो उनको लगा कि भाई समस्या जटिल है, मेरे बस की होती तो मैं सुलझा देता, और एक एक बार हो दो बार है, तो गलती करते ही रहते, कितनी सारी गलतियां कर करके पीछे में हम सुन सुन करके आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है देखा चलो ठाकुर जी के पास चलते हैं, उन्हीं से जो है गलतियों को बता देंगे, वो सॉल्व करेंगे, वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए सारे देवता लोग कहां पहुंचे, क्षीर सागर में, श्वेत द्वीप है, श्वेत द्वीप जो है एक स्थान है, ये जो है इसी भौतिक जगत के अंदर है, हालांकि ये बैकुंठ है। जैसे ध्रुव लोक भी इसी भौतिक जगत में है, लेकिन वो पूरा कैसा है, बैकुंठ लोक है, उस पर जरा जैसे ब्रह्मा के 100 वर्ष में पूरा संसार खत्म होता है, तो वहां उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ठीक ऐसे ही जो है क्षीर सागर में जो है वो सब गए देवता लोग, वो जाकर के ठाकुर जी की अब स्तुतियां कर रहे हैं। इसके बाद भगवान प्रकट होंगे और उनको क्या सजेशन देंगे वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो स्तुति कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमने सुना कि कैसे कैसे जो है अलग अलग चीजें भगवान से उत्पन्न हो रही हैं, और इस श्लोक में भगवान की माया का वर्णन कर रहे हैं। स्पेशली भगवान तो कितने बल, उसको छोड़ दो भगवान को तो हम क्या समझें, एक भगवान की छोटी सी शक्ति है जिसको बोलते हैं बहिरंगा शक्ति, बहिरंग। ये भगवान के कहां रहती है, बाहर देश में रहती है, अर्थात ना इसका भगवान से बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं, मतलब टच नहीं है। जैसे अंधकार कहां रहता है, जहां प्रकाश नहीं है, है कि नहीं। कभी आपने सुना कि अंधकार और जो है प्रकाश दोनों एक साथ में बैठ करके कुछ इसी गोष्ठी कर रहे हो या प्रसाद ले रहे हो, चलो भाई लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है लेकिन कम से कम प्रसाद तो साथ साथ में ले सकते हैं ना। कभी सुना प्रकाश और अंधकार दोनों को, या तो प्रकाश रहेगा या फिर अंधकार रहेगा, और प्रकाश अंधकार रहेगा लेकिन सीमा के उधर उधर रहेगा। तो इसलिए जो है बहिरंगा का मतलब ही होता है कि भगवान से उसका इंटरनली कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ये भगवान के जो है बहिर प्रदेश में रहती है, ना भगवान के धाम से भगवान भी इसी जगत के अंदर आते हैं, ना भगवान की जो है किसी भी लीला से उनका कोई लेन देन रहता। तो इसलिए यहां पर जो है भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है जिसको बड़ा निकृष्ट कहा गया है, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतियम भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये भगवान की जो है भिन्न प्रकृति है, ये बिल्कुल अलग रहती है भगवान से हट करके, लेकिन भगवान के ही निर्देशन में काम करती है। नहीं सोच लेना चाहिए अलग है तब तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपना जो भी करना है करो, नहीं, काम भगवान के उससे ही करती है लेकिन संपर्क भगवान से नहीं है। तो वो जो है भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जिसके लिए चेतन चरितामृत में कहा गया है, चेतन चरितामृत में बताया गया है कि माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, ये जो कुछ भी देख रहे हैं ये पृथ्वी लोक देख लो, इसके ऊपर फिर और सात लोक हैं, भू भुव स्वर्ग जन मह तप सत्य, फिर नीचे के और सात लोग हैं, तल तल बितल सुतल तलातल रसातल पातल। तो ये जो सारा जो वैभव देख रहे हैं, हर एक लोक से दूसरा लोक बढ़कर के है, वहां के ऐश्वर्य भी सैकड़ों गुना बढ़कर के हो जाते हैं। तो ये सारा जो वैभव फैला हुआ है संसार के अंदर, वो सब किसकी सृष्टि है, माया की शक्ति है। किसकी सृष्टि है, हा ये सब माया की सृष्टि है। ये सबसे छोटा लोक है, ठीक है ना। इसको समझ पाना इतनी टेढ़ी खीर है। कभी टेढ़ी खीर नाम सुना आप लोगों ने, बोलते हैं तो टेढ़ी खीर है, खीर कभी टेढ़ी होती है तो एक मुहावरा है। टेढ़ी खीर का मतलब होता है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में इसका जो वैभव है इतना अपार है, इतना अपार है कोई ब्रह्मा जैसी आयु प्राप्त करे, ब्रह्मा जैसी बुद्धि प्राप्त करे, वो व्यक्ति भी जो है इस संसार को नहीं समझ पाता, तो फिर हमारे जैसे मच्छरों के लिए तो फिर कहा क्या जाए, हम क्या समझ पाएंगे। फिर भी हम लोग चैलेंज कर देते हैं, भगवान देखा है तो दिखाओ हमें, जैसे भगवान हमारे नौकर है, अरे बोल बुलाओ उसको अभी दिखा देता है। अरे भाई बोलने से पहले हमें जानना चाहिए कि भगवान की महिमा कितनी है। आप देख रहे हैं देवता लोग, ब्रह्मा जैसे देवता जिसमें शिव जी हैं, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, हमसे कितने शक्तिशाली हैं, वो भी जाकर के स्तुति कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि ए भगवान हमारा काम बिगड़ जल्दी निकलो बाहर आओ इसको सॉल्व करो, नहीं। तो यहां पर जो है ये जो बता रहे हैं कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, इसके दो भाग किए गए हैं। जो जो कारणाव जल है जिसको बिरजा नदी बोलते हैं, बिरजा नदी से सब नीचे की तरफ, ये सब किसका वैभव है, माया का वैभव है। और बिरजा नदी से उस साइड में सब जो है भगवान के फिर योग माया का वैभव, अंतरंगा है उसका जो है वैभव है। तो बिरजा नदी के, बिरजा नदी उसको बॉर्डर है उसका जो है, उसको जो है बॉर्डर बना दिया है। तो इसलिए इधर का जो वैभव सब देख रहे हैं ये सब जो है माया का है। तो माया के बारे में यहां बता रहे हैं कि द्रव्य द्रव्यम व्यय कर्म गुणान विशेषम, यत योग माया विहितान वदंती, यद योग माया विहितान वदंती। तो बोलते हैं द्रव्य जो पांचों तत्व हैं, द्रव्य हैं, वय, वय का मतलब यहाँ काल, कर्म सकाम कर्म, और गुण प्रकृति के तीन गुण सत रज तम और अनविशेषम, सॉरी विशेषम, विशेषम का मतलब होता है 23 तत्वों के संयोग से उत्पन्न किस्में, जो अलग अलग जो है, जो वैरायटी आप देख रहे हैं संसार के अंदर है। तो ये सब क्या है, यत योग माया विहितान वदंती, ये सब किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, ये भगवान की योग माया की सृष्टि है, सब कुछ जो है उसी के द्वारा सृष्ट किया गया है। तो इसलिए बोलते हैं यद दुर्विभावम, मतलब इस छोटे से, मतलब एक सृष्टि है जिसको बोलते हैं कि इसको समझना कैसा है, दुर्विभाव्यम, इसको समझना जो है बहुत ही बहुत कठिन है। प्रबुदाप बाधम, तो इसलिए एक दूसरा विशेषण दे रहे हैं कि प्रबुदाप बाधम, जो प्रबुद्ध हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने हालांकि भगवान की सृष्टि बड़ी चित्र विचित्र है, लेकिन उन्होंने जो है इसको क्या किया है, तिरस्कृत कर दिया है। तिरस्कृत करने का मतलब होता है इस, उनकी कोई रुचि नहीं है इसमें, समझ रहे ना। तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो पहला विशेषण दे रहे हैं इस सृष्टि के बारे में, जो भगवान की इतनी सुंदर सुंदर सृष्टि है कि नहीं है, आप पहाड़ों में देखते हैं कितनी चित्र विचित्र चीजें हैं, यहाँ भी देखते हैं कहीं जो है क्या नाम, जब मायापुर की परिक्रमा में जाते हैं, नवदीप मंडल की परिक्रमा में, वहां देखते हैं कि खेतों में मतलब फूलों के बागान जैसे देखो चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता है कुछ है? ऐसे लगता है कि यही कुटिया डालो बस यही रहो, इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ों के अंदर इतने सुंदर झरने जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां हैं आप देखेंगे। एक बार हम जो है क्या नाम है 92 में या 3 में हम जब पदयात्रा में गए थे, हिमालय यात्रा में पहली बार हम जो गए थे, तो उस समय वहां जो है जब हम पहाड़ियों को चढ़ते थे तो इतना कोई पहाड़ी बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल पत्थर, एक वृक्ष भी एक घास भी दिखाई नहीं देगी। दूसरी पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, तीसरी पे चढ़ेंगे तो घास ही घास दिखाई देगी, चौथी पे जो है फूल ही फूल जैसे दिखाई देंगे, अलग अलग आप चढ़ते पूरे दिन चढ़ते जाइए उसका और छोर कुछ दिखाई नहीं देता है, भाई कितना चढ़ना है, अलग अलग प्रकार की, और उसमें फिर झरने सुंदर सुंदर देखेंगे पागल हो जाएंगे, और फिर वहां की नदियां, नदियों को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये छोटी सी नदी है, लेकिन जैसे ही पास में जाएंगे और जब उसकी अच्छी तरीका से दृष्टि से अवलोकन करेंगे तो फिर कप जाएंगे, इतना फोर्स रहता है उसमें, इतना फोर्स रहता है, एक बार नीचे गिर गए तो आपको जो है उठने नहीं देंगे, फिर आप प्रणाम ही करते रहना उसको, उठ नहीं सकते हैं, इतना फोर्स रहता है। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज है, आप चित्र विचित्र है। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि प्रबुधाप बाधन, जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने इस संसार का अवलोकन किया, अच्छी तरह से इसको समझा, और समझ करके उन्होंने क्या किया है, अपबाधम, अपवाद का मतलब होता है बाधा समझ करके, इस संसार को जो है रहने का स्थान न मान करके, क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा है संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, क्योंकि ये संसार दुखमय है और कब क्या हो जाएगा कुछ भी कह नहीं सकते, अशाश्वत है। इस प्रकार जान करके उन्होंने इस संसार को क्या किया है, तिरस्कृत कर दिया है। तो इसलिए ऐसे जो भगवान की सृष्टि कैसी है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, ऐसे जो भगवान है वो प्रसिद्धताम न स महाविभूति, भगवान जो हर वस्तु के नियंता हैं, हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे भगवान हमारे ऊपर क्या हो, प्रसन्न हो। तो विशेष बात क्या है यहाँ, विशेष बात ये बात दे रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में है? एक तो जो है दुर्विभाव्यम और प्रबोधापवादम, दो चीज का मतलब व्याख्या कर रहे हैं। तो दुर्विभाव्यम के बारे में यहां पर जो बता रहे हैं कि इस संसार को समझना बहुत मुश्किल है। हम पंचम स्कंद जब पढ़ते हैं तो पंचम स्कंद में हम जो है भगवान की सृष्टि के बारे में सुनते हैं, तो आप जो है देखते हैं कि वहां जो है जो सात द्वीप हैं, सप्तद्वीप, सप्तद्वीप में कौन कौन से हैं, जम्बू, जम्बूद्वीप, द्वीप प्लच्छ द्वीप, सालमली, कुश, क्रौच, साक और पुष्कर, ये सप्तद्वीप है। सप्तद्वीप में से एक का वर्णन वहां हुआ है, किस चीज का, जम्बूद्वीप का। तो जम्बूद्वीप में जो है फिर नौ खंड हैं, कौन कौन से हैं, इलावर्थ, भद्रास, केमपुरस, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। हिरण्यमय तो ये जो है इसके नौ भाग किए गए हैं इसमें। इसका जो है वहां पर जो बता रहे हैं कि जो केवल एक इलावर्त वर्ष है, और बातों को तो छोड़ दो है? क्या उसके बारे में ज्यादा बताएंगे, तो इलावर्त वर्ष के बारे में थोड़ा सा यहां पर विश्लेषण किया गया है कि जो इलावर्त वर्ष है उसमें जो है लगभग कितने जो मुख्य मुख्य पर्वत हैं 12 और छोटे उनसे थोड़े से छोटे हैं वो 8। तो 12 पर्वतों की जो है पहले वो बता रहे हैं, जैसे हिमबान है, हिमकूट है, निषद है, नील है, श्वेत है, श्रृंगार, ऐसे ऐसे जो 12 पर्वत हैं, इन पर्वतों की ऊंचाई है 10,000 योजन। 10,000 का योजन का मतलब होता है, एक योजन का मतलब होता है 8 मील। तो 8 मील का मतलब हो गया, 10,000 योजन का मतलब कितना मील हो गया, 80,000 मील। सोच लो इसमें भारतवर्ष तो केवल एक का हम बात कर रहे हैं, ऐसे जो है इस मतलब इससे भी कम नहीं है, कोई ज्यादा ही है। 80,000 मील में मतलब ऐसे ऐसे एक एक पर्वत है। एक पर्वत गया तो भारत अपना जो है जितना भी है वो कहां चला जाएगा, लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है वो बताया गया है कि जो इनकी ऊंचाई है 10,000 योजन और इसकी लंबाई भी ठीक इतनी ही है, 10,000 योजन के ऊपर ऊंचाई भी लंबाई भी। तीसरे जो है यहाँ के जो वृक्ष हैं, इनमें जो है अलग अलग द्वीपों में अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं। जैसे जो है जम्मू द्वीप में कौन सा वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, तो इन वृक्षों में जो है इसका जो है बारे में बता रहे हैं कि जो जम्मू द्वीप का जो वृक्ष है जामुन का, तो उसके बारे में बोले एक कितना है, 1100 योजन लंबा। एक वृक्ष जो है 1100 योजन लंबा और इसके बारे में बोले हैं 10,000 योजन ऊंचा, सॉरी इसका बोले लंबाई है और चौड़ाई, उसकी चौड़ाई है 10,000 योजन। और इसमें जो है आप सोच सकते हैं कि दूध, मधु, रस, शुद्ध जल, मठा, घी, कितने कितने सारे समुद्र भरे पड़े हैं। केवल एक की हम बात कर रहे हैं, ऐसे आप जो है अलग अलग नौका भी सब इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। उसमें फिर कितने सहार हैं, कितने वन हैं, कितनी कितनी नदियां हैं। अब एक मेरे को कुछ मिला था, क्या नाम है उसमें जो नदियों के बारे में बताया था, कितना कितना 70 लाख कितना इतना जो है कुछ नदियों के बारे में उसमें वर्णन किया गया था। कहने का आशय है कि दूसरा आप देखेंगे जैसे पृथ्वी का ही देखो, अब एक एक नक्षत्र को लो, सूर्य से बड़े हैं, चंद्रमा से बड़े हैं, एक एक जो तारा देख रहे हैं ना, सूर्य चंद्रमा से भी बड़े हैं। तो इस सारे सृष्टि को मिलाकर के हम देखें, वास्तव में कुछ समझ में आएगा हमारी में, कुछ हम किसी चीज का विश्लेषण कर सकेंगे है कि नहीं है। बोलो हरे कृष्णा, सो गए या जाग रहे हैं? तो इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस दुर्विभाव्यम इसलिए कहा गया कि आप समझोगे क्या चीज है। एक भारत वर्ष को नहीं समझ रहे, भारत वर्ष की तो जाने दो भाई, भारत वर्ष में यूपी कितना खतरनाक है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। यूपी में भी कितने कितने सारे एक एक शहर हैं जिनमें जाने से आपको मालूम ही चलेगा कि हम जो है नरक में हैं या पृथ्वी पे हैं, तो फिर हम और दूसरी जगह की क्या है, समझ रहे ना। तो इसलिए जब मैं लिख रहा था तो मेरी कलम नहीं चल रही थी, कप रही थी, मैंने जाने दो भाई इसको लिखना ही इतना मुश्किल हो रहा है तो फिर समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है यहाँ पर ये बात बताई गई है कि फिर इस संसार के क्यों वर्णन कर रहे हैं, कैसे समझेंगे। तो इसलिए संसार